ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभुपाल लीलामृत प्रकरण 52। मैंने अपने हिस्से का कार्य पूरा कर दिया है। पृष्ठ संख्या 656 का लास्ट पैराग्राफ है। जब उनके जीबीसी के लोग आपस में वसीयत के विवरण पर विचार विमर्श कर रहे थे तो प्रभुपाद इस्कान की संपत्तियों के लिए चिंता मग्न बिस्तर में लेटे थे। उन्होंने कुछ खाने का प्रयत्न नहीं किया और उपेंद्र को उनकी छाती की मालिश करनी पड़ रही थी। उस दिन बाद में मधुर कीर्तन करते हुए भक्तों के दल से घिरे हुए प्रभुपाद के खतरे की फिर चर्चा करी। उन्होंने कहना आरंभ किया कि बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, वे लोग बड़े उपद्रवी हैं। तमाल कृष्ण, जिन्हें मालूम था कि प्रभुपाद किस विषय में बात कर रहे हैं, बोले हमें तुरंत कर देना चाहिए, इसे न्यास की संपत्ति बना दिया जाए। श्रील प्रभुपाद ने कहा इसे किया जाएगा, बहुत अच्छा। जो बात प्रभुपाद कह रहे हैं वह सामान्य नहीं थी, किंतु उसे मजबूती और होशियारी से करना था। इसका तात्पर्य था कि इसे प्रभुपाद को स्वयं करना था। अब वे और अधिक प्रबंध देख नहीं सकते थे, किंतु क्या उनके शिष्य उन्हें विश्वास दिला सकते थे कि संस्था की संपत्तियों और इसकी दौलत की रक्षा उनके द्वारा की जाएगी। तमाल कृष्ण ने इस मामले में जीबीसी की क्षमता के संबंध में प्रभुपाद को विश्वास दिलाने के लिए कहा, सभी संपत्तियों की रक्षा की जाएगी, विशेषकर भारत में। भवानंद गोस्वामी ने कहा, श्री प्रभुपाद, न्यासियों की नियुक्ति तुरंत हो जानी चाहिए। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बिना पद का न्यासी नहीं, न्यासी कहाँ है। मैंने बुक ट्रस्ट के लिए ट्रस्टियों का एक प्रारूप तैयार किया है, इसी तरह इसके लिए भी बना लूं। तमाल कृष्ण ने कहा, तो उसी तरह का हम एक प्रारूप बना लेंगे, प्रारूप स्वीकृत हो जाने पर आप हमें बता सकेंगे कि आप किन ट्रस्टियों को चाहते हैं। श्री प्रभुपाद ने कहा, अरे आप अपने में से चुन सकते हो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो। जब तमाल कृष्ण ने उल्लेख किया कि भारत में 3 स्थान, बम्बई, वृंदावन और मायापुर, सर्वोपरि महत्वपूर्ण है, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, प्रत्येक स्थान। इसके बाद उन्होंने ये और जोड़ा, आप लोगों में से कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, यही कठिनाई है। तमाल कृष्ण ने स्वीकार किया, ये सच है। श्री प्रभुपाद ने कहा, सभी मेरे बच्चे हैं। ये युक्ति प्रेम की थी, राहत की नहीं। हमें एक शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता है, इसकी कमी है। हर छोटे मोटे मामले में मुझे मुंह खोलना पड़ता है। जो भी हो, आप जैसे भी हो, बैठ जाइए और न्यासियों को चुन लीजिए। प्रारूप तो बन ही गया है, ट्रस्ट बना डालिए। आप में से रामेश्वर कुछ समझदार है, जैसा भी है भरसक प्रयत्न कीजिए, अन्यथा एक बहुत बड़ी अंतरधारा बह रही है, वे आपके कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तमाल कृष्ण ने प्रभुपाद को विश्वास दिलाया, वे तुरंत एक बैठक करने जा रहे हैं, हम इन सभी बातों पर विचार विनिमय करेंगे। श्री प्रभुपाद ने कहा, चर्चा तो मैं कर चुका हूँ, अब इसे कर डालो। तमाल कृष्ण ने कहा, मेरा मतलब यह था कि हम इसे करेंगे। प्रभुपाद बोले, बहुत ठीक, देर नहीं करो। चर्चा चल रही है कि हमारे भारतवर्ष में जो जगह प्रभुपाद ने मंदिरों के लिए ली थी, उस सब में झगड़े। मायापुर में झगड़ा था, बम्बई में झगड़ा था, वृंदावन में झगड़ा था, सभी जगह झगड़े थे। अब उन झगड़ों के लिए जो काम करना है, उस समय की बात है, ऐसे कि जो प्रभुपाद के मुख्य शिष्य थे सारे गोरे थे, सारे मुख्य में सब गोरे थे, एक दो भारतीय थे। अब वो गोरों के साथ जो है, हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान के लोग सेट नहीं बैठते थे, तो झगड़े चलते थे। तो प्रभुपाद क्या चाहते हैं कि इसका एक ट्रस्ट बना दिया जाए, ट्रस्ट के सभी लोग हों और जो भी झगड़े हैं उनको ट्रस्ट मिलजुल के सॉल्व करे और सारे मंदिरों को ट्रस्ट मिलजुल के चलाए। जैसे कि आज हमारे पास जीबीसी हैं, तो उस जमाने में जो जीबीसी थे उनको मंदिर के चलाने की जिम्मेदारियां दी जाए, मंदिरों का सारा देख रेख करें, मंदिरों का सारा कार्य करें। उसी की चर्चा आ रही है कि ट्रस्टी जो है बनाए। प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने बुक ट्रस्ट बना दिया, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, बीबीटी जिसे कहते हैं हम लोग, बीबीटी मैंने बना दिया है। बीबीटी के मैंने मेंबर्स भी सारे सिलेक्ट कर लिए हैं, हमारे महाराज जो हैं उसके मुख्य ट्रस्टी हैं, मेन ट्रस्टी हैं उस जमाने से। परंतु अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे और काम हैं जिसको इंडिविजुअल एक व्यक्ति नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, जो गौड़िया मठ में प्रॉब्लम आई थी कि सिंगल मैन था एक मठ का इंचार्ज, वो बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती के महाराज मठ का इंचार्ज बन के बैठ गया, झगड़े हुए, तो प्रभुपाद ने कहा मुझे झगड़ा नहीं करना है, मैं यहाँ से विदेश जा रहा हूँ। तो ही प्लान कि मुझे विदेश जाना है और मुझे इंटरनेशनली काम करना है। तो इसी तरह जाते हैं कि इस वक्त जो है इस्कॉन में जो चल रहा है उसमें भी आने वाले कल में झगड़े ना हों, तो उसका उपाय क्या है कि एक एक जगह को संभालने के लिए मल्टीपल हैंड्स हैं, ज़्यादा लोग हैं। जिससे कि कोई कहे कि मैं स्वामी हूँ, मेरा स्वामित्व है, मैं मालिक हूँ, इस जगह को मैंने बनाया है, मैंने डेवलप किया है, इसका मालिक मैं हूँ, ऐसा जो है भाव किसी के मन में नहीं आना चाहिए और उसको इसको स्वामित्व का जो है दावा नहीं करना चाहिए। स्वामित्व केवल संस्था का है, जो भी टेम्पल हैं उन सब की प्रॉपर्टीज सारा चीज जो है वो इस्कॉन के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो यहाँ ये चर्चा चल रही है, उन दिनों जो है बिगनिंग थी, टीथिंग प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए थोड़ी समस्याएं थी, वो आहिस्ता आहिस्ता प्रभुपाद ने गाइडलाइंस दी हैं, सब सेटल हो गई हैं। अगर किसी ने पढ़ी हो, ध्यान दिया हो, तो प्रभुपाद की जो इस्कॉन मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं, जो प्रभुपाद ने इस्कॉन को मैनेज करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसका एक बुक है। उस बुक के अंदर प्रत्येक टॉपिक है, झगड़े होते हैं तो कैसे निपटाए जाएंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्या रोल है, कौन किस पीछिंग है उसका क्या रोल है, डीटी किचन का क्या रोल है, किचन का कैसे होना चाहिए, हर चीज की गाइडलाइंस दी हैं कि वो कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, किन मानदंडों के ऊपर उसको स्थापित किया जाए। तो अब वही चर्चा आ रही है कि प्रभुपाद कहते हैं कि संस्थाओं को चलाने के लिए ट्रस्ट की आवश्यकता है, उसके ट्रस्टी होने चाहिए जो उसको मैनेज करेंगे। आगे लिखते हैं, इस तरह के अवसरों पर विशेष रूप से स्पष्ट हो जाता था कि वह दिन आने ही वाला है। कौन सा दिन है? जब प्रभुपाद के बच्चों को बड़े होकर संघ का अपने बूते पर नेतृत्व संभालना होगा, इतने कॉम्पिटेंट हो जाएं, इतने समझदार हो जाएं कि जो संस्था है इसको लीड कैसे करना है। जैसे आजकल भी हम देखते हैं कि ट्रेनिंग होती है, लीडरशिप गाइडलाइंस, इसका लीडरशिप वैसा गाइडलाइन चलती है, नहीं ट्रेनिंग चलती है कि नहीं चलती है, लीडरशिप मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग चलती है। तो प्रभुपाद ने उस जमाने के अंदर ये गाइडलाइन दी है कि आपको बच्चे मीन्स जो अभी संस्था में आए हैं, नए नए लोग हैं, उनको बच्चा कहा गया है, वो साइज से बच्चे नहीं है। वो जो संस्था के अधिकार हैं, संस्था में जो बुद्धि प्रदान की जा रही है, संस्था की जो वर्किंग है, संस्था का जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर वो बच्चे मतलब अभी चाइल्ड ही हैं, अभी मैनेजमेंट को संभालने में एक्सपर्ट नहीं हुए। अब प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनको एक्सपर्ट होना है कि बड़े होकर संघ का अपने बूते पर नेतृत्व संभालना होगा, प्रबंध करना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी, फिर उसका विस्तार करना होगा। हो सकता है ये अंतिम अवसर हो जो उन्हें सीधे उनसे सीखने को, उनके निकट बैठकर कीर्तन करने को और अपने आप को पूर्णतया अर्पित करने से मिल रहा था कि वे इस्कॉन के लिए उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। मतलब जितने भी यंग लोग आए हैं प्रभुपाद के प्रति समर्पित हैं, नाउ दे विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, कि प्रभुपाद क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्या क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो उनके ऊपर चलते हुए उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। ऐसा लग रहा था मानो श्री प्रभुपाद को संदेह था कि बच्चे अपने आप को अवसर के उपयुक्त साबित करेंगे और यह अभिव्यक्त संदेश शिष्यों को उकसा रहा था कि वे हतोत्साह ना हो, वरना अपने आप को स्वामी भक्त और सक्षम सिद्ध करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कार्यरत हो जाएं। तो यहां चर्चा आ रही है कि सक्षम, सक्षम मीन्स क्षमता होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए कि संस्था को ठीक से चलाना है, इसको ठीक से चलाना है। और स्वामी भक्त की बात आ रही है, किसके प्रति स्वामी भक्ति है? स्वामी भक्ति है संस्था के प्रति, क्योंकि सबकी स्वामी संस्था है। तो संस्था के प्रति स्वामी भक्त होने चाहिए, संस्था के प्रति गाइडलाइंस करने के लिए सारे इंतजाम सीखने चाहिए और अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहिए। उस दिन संध्या समय GBC की एक समिति ने श्री प्रभुपाद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि वसीयत का प्रारूप तैयार हो गया था, जिसमें निर्धारित न्यासियों द्वारा इस्कान संपत्तियों के अभिरक्षण का विधान था। रामेश्वर ने श्री प्रभुपाद के समक्ष रिपोर्ट पढ़कर सुनाई, जिन्होंने केवल कुछ थोड़े से संशोधन किए। मतलब जो चर्चा चल रही थी अब वो प्रैक्टिकल शेप में आ रही है कि GBC जो है उनके उन GBC के अंदर भी एक ग्रुप, एक समिति बनाई, अलग से कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जो है जो इस्कान की संस्थाएं, जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितना भी काम है, उसका एक उन्होंने जो है एक एक ड्राफ्ट तैयार किया है, और ड्राफ्ट करके कि ये वसीयत है, विल है कि इसको कैसे चलाना है। अब उसमें जो ट्रस्टी रखे गए हैं उनका नाम आ गया है कि इनको जो है सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को संभाल के रखना होगा। अब उस रिपोर्ट में प्रभुपाद ने थोड़े से चेंजेस किए हैं, थोड़े से संशोधन किए हैं। रामेश्वर ने कहा इससे अब हमें कोई धोखा नहीं दे सकेगा। प्रभुपाद सहमत हुए और बोले, हाँ जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वे कभी कभी अत्यंत चिंताजनक मामलों में भी मौन रहते थे। जहाँ तक संभव था उन्होंने GBC के लोगों का दिशा निर्देशन किया था, जब अधिकांश में वे पवित्र नाम की औषधि चाहते थे, किंतु शिष्यों ने जो कुछ किया था सब ठीक था और वे उससे संतुष्ट थे। जब समिति उनके कमरे से जा रही थी तो उन्होंने मंद स्वर में कहा, इस्कॉन के भावी निर्देशकों की जय हो। देखिए, एक प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया, आप उसको अंडरस्टैंड करिएगा। वो सिस्टम जो है इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इस्कान के भावी निर्देशकों की, जो इस्कान को फ्यूचर के अंदर चलाएंगे, इसके डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, ट्रस्टी होंगे, GBC के मेंबर्स होंगे, तो उन्होंने कहा कि जो मेरे कमरे से जा रही है उसमें जो है इस ट्रस्ट को, जो संपत्तियां हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, इसको मैनेज करने वाली टीम है। तो ये भी एक इस्कॉन का एक फ्यूचर मैनेजमेंट टीम है, इसकी उन्होंने जय बुलाई। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम जब प्रेम ध्वनि गाते हैं उसमें 3 बार हम कहते हैं ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, एकत्रित भक्तों की जय हो। मतलब ये जो एकत्रित हैं, चाहे वो अभी भक्ति में आए हैं या नहीं आए हैं, चाहे अभी नियोफाइट हैं, चाहे अभी हफ्ता पहले आया, 15 दिन पहले आया, महीना पहले आया, 6 महीने पहले आया, साल पहले आया, 5 साल पहले आया, 10 साल पहले आया, 20 साल पहले आए, एक ग्रुप है। उसमें ऐसा नहीं है कि जब हम यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं या यहाँ पर हम जो कथा कर रहे हैं, भाई वहाँ गेट पे बंदा बिठा दिया, जो 20 साल से है वही अंदर जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। जो 15 साल पहले भक्त बना था उसके पास कार्ड होना चाहिए, मैं 15 साल पुराना भक्त हूं, उसको परमिट करेंगे, बाकियों को परमिट नहीं करेंगे। कोई भी आएगा, कोई भी बैठेगा, पहली बार आया है, नो प्रॉब्लम। पर प्रभुपाद ने क्या नियम बनाया कि सबकी जय। वो ये नहीं कहेंगे जो 20 साल पुराने उपस्थित भक्त हैं उनकी जय हो, नए भक्तों को छोड़ दिया उनकी जय नहीं बुलाई, ऐसा होता क्या, हो रहा क्या? जो 15 साल पुराने भक्त हैं उनकी जय हो, नए भक्तों की जय नहीं है। तो ये देखिए उसका बीज जो है, बीज कहाँ है कि इस्कॉन के भावी निर्देशकों की जय हो। अभी वो बहुत जूनियर स्टेज पे हैं, बहुत ही लो लेवल पे हैं, अभी बहुत जूनियर स्टेज पे हैं, पर फ्यूचर डायरेक्टर्स हैं, फ्यूचर मैनेजर्स हैं, फ्यूचर लोग हैं जिन्हों की टेंपल्स को, डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज को, डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस को, डिफरेंट डिफरेंट कार्यों को मैनेज करना है। तो प्रभु बात कह रहे हैं इस्कान के भावी निर्देशकों की जय हो। और बाद में जब वे अपने सेवकों के साथ अकेले थे तो उन्होंने अश्रुपात किया, प्रभुपाद रोए, ही वेप्ट, और कहा कि अब मैं शांतिपूर्वक जा सकता हूं। उनको बीच बीच में जो भक्त होते हैं, जो एडवांस्ड लोग होते हैं, जो कि स्पेशल पावर्स हैं जिनके पास, उनको अंदेशा हो जाता है कि हमारा शरीर कब त्यागे जाएगा, अब समय आ गया जाने का, धाम से बुलावा आ रहा है, भगवान हृदय में बैठे हैं, वो निर्देश दे रहे हैं कि कार्य समाप्त करो और लौट के मेरे पास वापस आ जाओ। जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें भेजा था वो कार्य अब पूर्ति की ओर है, पूरा होने की ओर है। अब 200 साल का जीवन तो हो नहीं सकता, जितना जीवन है उतना ही है, भगवान ने जितना जीवन दिया इतने काम में तुम्हें काम करना है, तो उसी हिसाब से करना है। कठिनाइयां आएंगी तो भी कार्य करना है, दिक्कतें आएंगी तो भी कार्य करना है, परेशानियां होंगी तो भी कार्य करना है। प्रभुपाद ने अपने जीवन में कभी ये नहीं कहा बूढ़ा हो गया हूं, बीमारियां चल रही हैं, छोड़ो परे क्या करना है, आराम से वृंदावन में रहो, मुझे मैनेज करने की क्या आवश्यकता है, मुझे कार्य को देखने की क्या आवश्यकता है, मुझे लोगों को ट्रस्टी बना के, समितियां बना के, कमेटीज बना के, डिफरेंट डिफरेंट कामों में लगाने की क्या आवश्यकता है, अरे सब बूढ़े लोग भजन कर रहे हैं, मैं भी भजन करके आराम से बैठा रहूंगा। पर अंतिम दम तक उन्होंने भागवतम का ट्रांसलेशन किया, अंतिम दम तक उनका जीवन का जो कार्य था उसके बारे में एक 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 करके वो उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं। और फिर फील ये आता है कि मैं अब जाने वाला हूं। आपसे एक थोड़ी सी प्रभुपाद की स्टोरी, एक उनका जीवन का जो पार्ट है उसको शेयर करता हूं। मायापुर के बगल में शांतिपुर है, कितने लोग गए वहां? शांतिपुर में क्या है? वहां एक मंदिर है राधा कृष्ण का, शांतिपुर में एक राधा कृष्ण का मंदिर है। प्रभुपाद अभी सन्यासी नहीं बने हैं, ग्रस्त हैं, मंदिर में जाते थे, दंडवत करते थे, प्रणाम करते थे, फिर मंदिर में थोड़ा दूरी पे खंबा था एक ऐसा ही, उस खंबे के पास बैठ के जप किया करते थे। तो पुजारी से भी कोई ज्यादा तालमेल नहीं था, तो देखा करते थे कि पुजारी ने देखा कि एक भक्त आता है धोती कुर्ता पहने हुए और अपना प्रणाम करता है और बैठ के जप करता रहता। एक आधी बार चर्चा हुई, नाम पूछ लिया, बोला मेरा नाम अभय चरण है। अच्छा, अब प्रभुपाद को संन्यास मिल गए। अब वो संन्यास मिलने के बाद भगवे कपड़ों में जाने शुरू हो गए। तो उस पुजारी ने नोट किया कि ये जो ग्रस्त आता था मेरे पास, मेरे मंदिर में, ये अब ये सन्यासी हो गया है और कार्य वही कर रहा, बैठ के जप कर रहा। तो प्रभुपाद से उनकी चर्चा हुई, बातचीत होती थी, थोड़ा बहुत मुलाकात थी, ज्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत मुलाकात थी। अब एक दिन जो है प्रभुपाद का आना बंद हो गया, वो वहां से, उस मंदिर से गायब हो गए। गायब हो गए तो अब पुजारी ने कहा लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो दुनिया का रूल है, दुनिया का रूटीन है। एक भक्त आता था, जप करता था, दर्शन करता था, प्रणाम करता था, अब चला गया, बात खत्म हो गई। कुछ साल बीत गए तो एक दिन जो है पुजारी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। 25-30 भक्तों की एक टोली, सारे अंग्रेज गोरे, चुटिया रखे हुए, भगवे पहने हुए, डंडे लिए हुए, कुछ अपना बिना डंडों के, और सारे जो है चलते चले आ रहे हैं, और सबके हाथ में साथ में बैक टू गॉड हेड मैगजीन है, भगवत गीता है। और शांतिपुर में उन्होंने मंदिर में जाके धावा बोल दिया, कीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं। अरे भैया ये कहाँ से आ गए, सबको हमें भी आश्चर्य होता था जब हम पहली बार इस्कॉन में आए थे, अरे मंदिर के अंदर ये अंग्रेज चुटिया रखे हुए है, गोरे रंग का धोती कुर्ता पहने, भगवे पहने, डंडा लिए हुए, क्या कर रहा है भाई ये कहाँ से आ गए। तो इस्कॉन के मंदिरों को लोग अंग्रेजों का मंदिर कहते थे, एक फेमस वर्ड था, अंग्रेजों का मंदिर वृंदावन के लिए बड़ा फेमस था। वहां किसी बच्चे से पूछो कि इस्कॉन जाना है, कहता कौन सा, अंग्रेजों वाला, अंग्रेजों वाला, तो अंग्रेजों का मंदिर फेमस था। अब वो पुजारी हैरान, ये भाई ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से प्रकट हो गए हैं, इनका क्या लीला है। और कीर्तन, हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग बज रही है, करताल बज रही है, झांझ बज रही है, और खूब अपना जो है नाचे जा रहे हैं, कूदे जा रहे हैं। तो उसके बाद जो है जब वो उन्होंने पुजारी को बैक टू गॉडेड दिया, भगवद गीता दिया, तो पुजारी क्या देखता है कि उसके अंदर जो है प्रभुपाद की फोटो है। ओहो, यही भक्त वहां बैठ के रोया करता था, खंबे के पास जप किया करता था और रोया करता था। मैं नहीं समझ पाया कि इतना बड़ा कार्य कर देंगे ये। तो प्रभुपाद ने अपने जीवन के अंदर प्लान करके सिस्टम बना के बहुत कार्य किया, और उनके भक्तों ने उस कार्य को डुबोया नहीं। वो कार्य जो है आगे चलता जा रहा है, दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। और आज हम देखें कि दिल्ली के अंदर मंदिर है, प्रभुपाद ने जो कहा था कि मेरे इतने 12 मंदिर होने चाहिए, प्रभुपाद ने एक प्रिडिक्शन किया था, एक उनकी रिक्वायरमेंट थी, मन की भावना थी कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली मिस दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो NCT एरिया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, रीजन है, उसके अंदर जो है 12 मंदिर होने चाहिए। तो आज आप गिनती करिए कितने, एक एक करके गिनाइए, गिनाओ ना 17-18 कौन से, पहले दिल्ली के काउंट करो आप, दिल्ली में कितने मंदिर, दिल्ली मींस जो दिल्ली विधानसभा जिसे कहते हैं, जो दिल्ली स्टेट है उसके अंदर कहते हैं, अभी NCT बाद में जाएंगे, दिल्ली में कितने मंदिर हैं, मंदिर मींस जहां पर जो है चाहे गौरनेता ही स्थापित हैं, डीटीज हैं, और वहां पर जो है पूजा अर्चना सेवा सारी हो रही है, मंगल आरती से लेकर रात के प्रोग्राम तक, कितने हैं। चार तो मुख्य मंदिर हैं, चार, ईस्ट ऑफ कैलाश, पंजाबी बाग, रोहिणी और द्वारका, चार मुख्य हैं, और पंचशील पांच, छिपीवाड़ा छह, छतरपुर सात, महिपालपुर में नहीं अभी, महिपालपुर में तो अभी डीटीज नहीं, बड़ी वाली पूजा वूजा वहां फोटो है, वो सेंटर्स हैं, महिपालपुर अभी सेंटर है, उसको छोड़ मंदिर नहीं है। एनीवे सात मंदिर हो गए, ठीक है। अब आप जो है NCT में चलिए, बहादुरगढ़ से स्टार्ट करते हैं, बहादुरगढ़ एक, साहिबाबाद दो, गाजियाबाद तीन, नोएडा चार, फरीदाबाद पांच, दो गुड़गांव में दो हैं, सात और सात 14 टेम्पल्स जो हैं वो 12 की रिक्वायरमेंट थी, 14 हो गए। प्रभुपाद ने 12 का रिक्वायरमेंट किया था कि मैं चाहता हूं कि दिल्ली के आसपास, दिल्ली के एरिया में कम से कम भी तो 12 मंदिर होने चाहिए। अच्छा, अब देखिए मजे की बात, हम जब पंजाबी बाग मंदिर को देखा करते थे, मुझे याद है अच्छे तरीके से, 99 श्याम कृष्ण प्रभु बैठे हैं, प्रभु जी बैठे हैं वहां पर, बताएंगे कि 2.5 करोड़ रुपए का मंदिर लेने के लिए ना जान सी निकल गई थी, 2.5 करोड़ कहां से आया, ठीक है प्रभु जी, राम राघव प्रभु मानते हैं ना इस बात को कि 2.5 करोड़ रुपए का मंदिर लेना है तो 2.5 करोड़ पैसा कैसे जमा होगा, कहां से आएगा, कैसे बनेगा, क्या मुश्किल आन पड़ी है। हुआ, बना, रेनोवेट भी हुआ, आगे भी बढ़ा, आज आप देखिए कि जो भी टेम्पल बन रहा है दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो बड़े एरियाज हैं, किसी भी टेम्पल का प्रोजेक्ट जो है वो 80-100 करोड़ से कम नहीं है। रोहिणी का बैठा है यहां कोई, कितना प्रोजेक्ट है प्रभु जी वहां का? 80 है अभी, 80 प्रोजेक्टेड है, लगेगा कितना अभी मालूम नहीं है, आगे कितना जाएगा। द्वारका 150 करोड़ की बात हो रही, वहां पे दो मंजिल, दो एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है। कुरुक्षेत्र 100 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है। अब कोई भी टेम्पल ले लीजिएगा आसपास, तो 80, 100, 125, 150 करोड़ से कम का तो प्रोजेक्ट ही नहीं। और सब बन रहे, सब चालू हैं। ट्रस्ट जो, यही ट्रस्ट जो प्रभुपाद स्थापित किया था, उसी ट्रस्ट की फिर फर्दर ब्रांचेज हो गई। ये कुरुक्षेत्र के लिए अलग ट्रस्ट है, पंजाबी बाग के लिए अलग ट्रस्ट है, ईस्ट ऑफ कैलाश के लिए अलग ट्रस्ट है, द्वारका के लिए अलग ट्रस्ट है। डिफरेंट डिफरेंट ट्रस्ट बनते चले गए और हर ट्रस्ट जो है उसको प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है और एक से एक खूबसूरत मंदिर बन रहे हैं, एक से एक खूबसूरत। मतलब मैं अभी बहादुरगढ़ में मैंने लेक्चर दिए हैं, पहले ओपनिंग पे भी गया था। जब हमने बहादुरगढ़ मंदिर लिया था तो सोचते थे 55 लाख रुपया लगाया है। राम राघव प्रभु, श्याम कृष्ण प्रभु जानते हैं कैसे मुश्किल से कलेक्ट हुआ था, कैसे मुश्किल से लिया था, कई ऑब्जेक्शन लगे थे, कहाँ जंगल में मंदिर ले लिया आपने, वहाँ कौन आएगा। और जेन्युइनली मैं 2003-04 से वहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं देखा करता था कि पहुँचने के लिए रेलवे फाटक बंद होता था, पहुँचना ही बड़ा कठिन था। जब 1 घंटे का रास्ता है, हम घर से चलते थे तो 2.5 घंटे का मार्जिन लेके चलते थे कि रास्ते में ट्रैफिक जाम मिलेगा, पहुंच नहीं पाएंगे। अगर 1 बजे लेक्चर करना है, आज 12 बजे चलते हैं, 1 बजे पहुंच जाते हैं, तब 10:30-11 बजे निकलते थे कि 1 बजे का लेक्चर करना है। और मंदिर देखिए, इतना खूबसूरत मंदिर बना है, किस किसने भादरगढ़ के दर्शन किए हैं? बढ़िया बना है कि नहीं बना? अच्छा बना है, फर्स्ट क्लास बना है, A1 क्वालिटी का बना। और मंदिर में जाके दर्शन करके, और मंदिर का जो मेन जो प्रांगण है, जो नीचे वाला प्रांगण है जहाँ की जल में जो है भगवान को बोट फेस्टिवल किया जाएगा, और आसपास की जो उन्होंने डायरामास बनाए हैं, इतने अट्रैक्टिव हैं कि आपको कम से कम मंदिर को प्रॉपर तरीके से दर्शन करने के लिए 1 घंटा चाहिए, मिनिमम 1.25 घंटा चाहिए। हर एक डायरामा के सामने खड़े होके उसका भाव देखते हुए, दर्शन करते हुए जब निकलेंगे, 1 घंटे से कम टाइम नहीं चाहिए। तो ये जो बीज है इन सब का, वो बीज यहाँ है कि अब उन्होंने अश्रुपात किया है, अब वो रो रहे हैं कि अब मैं समझता हूं कि मैंने एक कार्य कर दिया है और मेरे जाने का समय आ गया। कुछ दिन के बाद वसीयत की घोषणा एक वकील की उपस्थिति में अंतिम रूप में सत्यापित की गई, सर्टिफाई किया गया, जिसका मसौदा इस तरह आरंभ होता था, GBC संपूर्ण इस्कान की सर्वोच्च प्रबंधक अधिकारी होगी। गवर्निंग बॉडी काउंसिल जो है वो इस्कान की सर्वोच्च अधिकारी होगी। आगे उसमें उन सभी बिंदुओं का समावेश था जिनका संबंध इस्कान की संपत्तियों और प्रबंधन से था। GBC के 23 सदस्यों में से अधिकांश वृंदावन में अब भी उपस्थित थे, किंतु उनका तात्कालिक कार्य पूरा हो चुका था। एक जमाना था 23 मेंबर थे GBC में, आज मेरा ख्याल है 64 से ज्यादा है। आज GBC की गिनती जो है बढ़ती जा रही। श्रील प्रभुपाद के स्वास्थ्य में कुछ सुधार दिखाई देता था, इसे भक्त और प्रभुपाद निरंतर कीर्तन का आशीर्वाद मानते थे। प्रभुपाद ने कुछ तली हुई चीजें भी खाई और पचा ली। उन्होंने प्रातःकालीन अनुवाद कार्य भी फिर से आरंभ करने की बात की। GBC के सदस्यों को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में अत्यावश्यक निर्देशन और प्रशासनिक कार्य करने थे। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद के कक्ष में बारी बारी से 2 बार 3-3 घंटे का कीर्तन करने के अलावा वृंदावन में उनके पास अन्य कोई कार्य नहीं था। मौसम भी असह्य रूप से गर्म था, तापमान 120 अंश तक चढ़ जाता था, और उनमें से कुछ ने अपने कार्यक्षेत्रों में लौट जाने की योजनाएं व्यक्त की थी। तो प्रभुपाद ने अनुमति दे दी, वे एक सप्ताह तक एक साथ रह लिए थे और फिर अब एक एक करके अलग होने लगे। अगले एक सप्ताह में अधिकांश वृंदावन से जा चुके थे। श्रील प्रभुपाद और उनके साथ के थोड़े से लोग रह गए थे और कृष्ण बलराम मंदिर में भक्तों द्वारा अखंड कीर्तन चलता रहता था। जून के आते ही वृंदावन का मौसम अत्यंत गर्म हो उठा। अभी तक जो आकाश स्वच्छ था, नीला था, पहली वर्षा के आते ही धुंधला पड़ने लगा। दोपहर से लेकर शाम के 4 बजे के बीच भूमि इतनी तप जाती थी कि खुले पैर चलना कठिन हो जाता था। वृंदावन के लोग घरों में बंद हो जाते थे, अपना काम सवेरे या तीसरे पहर शाम को करते थे। यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी बंद हो गया था, वे गर्मी से भूख मर जाती थी। यमुना छिछली और गर्म हो गई थी, उसमें रंशपात्र भी आराम नहीं मिलता था। गाय घास और चारे के अभाव में दुर्बल हो गई थी और गर्म वायु के कारण यदा कदा औषधियाँ और बगुले उठते थे। मक्खियाँ और मच्छर हवा में मर जाते थे। ग्रीष्म से इन गिनी सुनी सुखद विशेषताओं में एक थी प्रभुपाद के बगीचे के चारों ओर दीवारों पर चढ़ी बेल के उन फूलों की सुगंध, जो सूखे गर्म मौसम में भी ना जाने कैसे पनप रहे थे। जून के प्रारंभिक दिनों में श्री प्रभुपाद को लगा उनके स्वास्थ्य में सुधार की कुछ आशा है। उन्होंने अपने प्रातःकालीन भ्रमण के लिए कार में जाना आरंभ कर दिया और जब उन्हें कार से ऊपर से नीचे कार तक लाया जा रहा था तो वे बोले, शीघ्र ही मैं स्वयं नीचे उतरने और चलने लगूंगा। उनके इलाहाबाद के पुराने मित्र डॉक्टर घोष आए, उनके रोग का निदान करके बताया कि वे भक्तों और कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए उनकी चिंता का कारण थे। श्री प्रभुपाद सहमत हुए, किंतु वे डॉक्टर के आदेशों का पालन नहीं करते थे क्योंकि उनमें उनके रक्तचाप का प्रतिदिन लिया जाना, अनेक प्रकार की औषधियों को खाना और कुछ विशेष उपचार सम्मिलित थे। अपने सेवक से मालिश कराने से उन्हें डर लगता था कि कुछ सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा, इस गति से वे 1.5 मास में भले चंगे हो जाएंगे, किंतु उन्होंने बल देकर कहा, मैं वृंदावन नहीं छोड़ रहा हूँ जब तक कि मैं अच्छा ना हो जाऊँ। एक दिन सवेरे श्री प्रभुपाद ने अर्च विग्रहों के दर्शन के लिए जाना चाहा और उनके सहायक उनकी घूमने वाली कुर्सी में उन्हें बिठाकर तत्परतापूर्वक कृष्ण बलराम के समक्ष ले गए। तमाल वृक्ष के नीचे अपनी कुर्सी में बैठे प्रभुपाद दिव्य बंधुओं पर दृष्टिपात करने लगे और आंसुओं की अनेक बूंदें उनके गालों पर ढुलकने लगी। वह बोले, इनकी वेशभूषा बहुत सुंदर है। एक ओर उन्हें कृष्ण बलराम की उपस्थिति में होने का लाभ मिल रहा था, दूसरी ओर वे तमाल कृष्ण की सुखद छाया में होने का आनंद प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने कहा, ठेकेदार इस वृक्ष को कटवा देना चाहता था किंतु मैंने अनुमति नहीं दी। तमाल वृक्ष अधिक संख्या में नहीं रह गए हैं और संसारिक लोग नहीं जानते। श्रील प्रभुपाद नियमित रूप से अर्चा विग्रहों के दर्शनों के लिए आने लगे। वह एक ऐसी घटना थी, धीरे धीरे मंदिर का दैनिक कार्यक्रम बन गई जिसमें इस्कॉन के भक्त और अतिथि सभी शामिल होने लगे। प्रभुपाद अपनी रॉकिंग चेयर में तमाल वृक्ष के नीचे बैठ जाते। एक भक्त कीर्तन आरंभ करता था, प्रभुपाद और अन्य भक्त बाद में गाते उनका साथ देते थे। प्रभुपाद के भक्तों के लिए वृंदावन की रमन रेती में मंदिर के अहाते के भीतर प्रभुपाद के साथ कीर्तन करना आध्यात्मिक संसार का मूल तत्व जैसा है। तमाल वृक्ष आज भी है, कटा नहीं। मैंने देखा है कि उसकी जो गोल परिधि है, सीमेंटेड एरिया है, बहुत सारे लोग उसमें बैठे रहते हैं और एक बड़ी शांति का भाव महसूस करते हैं इस, और कुछ लोग जो है उसमें बैठ के ही दर्शन करते हैं। प्रभुपाद भी तमाल वृक्ष के पास ही अपनी चेयर डाल के नीचे बैठा करते थे। यद्यपि प्रभुपाद का शरीर प्रत्यक्षता रोज ग्रस्त था, किंतु वे सदैव की भांति सतर्क थे और हर दिन सवेरे देख लेते थे कि वहां कौन उपस्थित है कौन नहीं। अपनी रॉकिंग चेयर में बैठे और कृष्ण बलराम की ओर निहारते हुए प्रभुपाद के साथ होने का ऐसा विशेष अवसर था जिसमें भक्तों का धीरे धीरे प्यार सा हो गया। वृंदावन के निवासी और तीर्थयात्री भी प्रभुपाद के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे और प्रायः उन्हें धन देते थे जिसे वो उनके चरणों में रख देते थे। स्फूर्ति से भरे गुरुकुल के युवा बालक प्रभुपाद के सामने नृत्य करते रहते थे। तीर्थयात्रियों का समूह उन्हें प्रणाम करता हुआ उनके चरणों पर धन चढ़ाता हुआ आता जाता रहता था और उनके सचिवों में से एक उन्हें विशाल चामर पंखा डोलाता रहता था और श्रील प्रभुपाद कृष्ण और बलराम पर ध्यान केंद्रित किए गंभीर और सरल भाव में बैठे रहते थे। कभी कभी वे अपने मुख्य कमरे से लगे बगीचे में जाकर एकांत में बैठते थे। एक भक्त ने वहाँ गुलाबी रंग के कमल के रूप में एक विशाल प्लस्तर का फवारा बनाया था और जब प्रभुपाद कुसुमित लताओं से घिरे छोटे शैया कोष्ठ में बैठे होते थे उस समय चलते हुए फवारे से उन्हें बड़ी प्रसन्नता और शांति मिलती थी। प्राय एक बंदर दीवार फांदकर बगीचे में आ जाता था और चुराने के लिए चीज़ें ढूंढने लगता था। प्रभुपाद उसे खदेड़वा देते थे अन्यथा वे मौन बैठे रहते थे। केवल कभी कभी एक दो शिष्यों के साथ कुछ बात कर लेते थे। एक दिन बगीचे में बैठे हुए श्री प्रभुपाद उस सभ्य और सरल जीवन की याद कर रहे थे जो उन्होंने एक बालक के रूप में बताया था। उन्होंने उन सारे संस्कारों का वर्णन किया जो उनकी माँ ने गर्भावस्था में प्रसव के समय की आपदाओं को शांत करने के लिए किए थे। यद्यपि उनका स्वर मंद और दुर्बल था फिर भी बात करने की और उनमें रुझान था। उन्होंने कहा, बच्चों की कितनी देखभाल की जाती थी, अब ये धूर्त बच्चों की हत्या कर रहे हैं। कितना असभ्य जीवन है, ये दो पैरों वाले जानवर हैं। इन दिनों भी भीतर भारत के भीतरी गांवों में जीवन शांतिपूर्ण हो सकता है और शांतिपूर्वक रहने और हरे कृष्ण कीर्तन के लिए उनके पास काफ़ी अन्न और काफ़ी दूध होता है और ये धूर्त वहाँ नसबंदी के लिए जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अनिवार्य नसबंदी संबंधी इंदिरा गांधी की नीति की ओर संकेत कर रहे थे। उन दिनों था, मुझे याद है, मैं मेडिकल कॉलेज में था 75-76 में, संजय गांधी जब उफान पे थे तो हरियाणा में चौधरी बंसी लाल हुआ करते थे। इन सब ने मिलकर नसबंदी करी थी तो बच्चों की कर दी थी, छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के 14 साल के उनकी कर दी थी। बस में से लोगों को खींच के उतारते थे, नसबंदी करते थे। कोई रिक्शा बोला वो रेड़ी वाला वो ठेले वाला छोड़ा नहीं था। तो ये नीति थी कि सबको जो है नसबंदी करके नंबर बढ़ाना है, गिनती बढ़ानी है और गिनती बढ़ा के संजय गांधी की आंखों में अपनी वैल्यू बढ़ जाएगी। वहाँ उपस्थित एक भक्त अभी अभी पश्चिम बंगाल से लौटा था। वहाँ वह गंगा में नाव से यात्रा कर गाँवों में धर्मोपदेश और प्रसाद वितरण करता रहता था। शिल्प उपाध्याय ने उसे बताना आरंभ किया कि किस तरह गाँवों में आटे की गोल बाटी बनाकर उसे खुली आग पर रख के सेंक लेते हैं और ये आग गाय के गोबर से बने कंडे की होती है और उसे खांडी आग कहते हैं। उसी आग पर वे एक बर्तन रख के उसमें दाल पका लेते हैं और कुछ समय में दाल उबल जाती है और वह बहुत अच्छी होती है। बाटी को घी में पका लेने से वह अव्वल दर्जे की बन जाती है। फवारा धीरे धीरे चल रहा था, कबूतर और हरे तोते चहचहा और फड़फड़ा रहे थे और प्रभुपाद मुक्त रूप में बात करने के लिए जा रहे थे। उन्हें अपनी जन्म कुंडली याद आई। 70 वर्ष के बाद यह व्यक्ति विदेश जाएगा और अनेक मंदिर स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि पहले उनकी समझ में नहीं आया कि वे सचमुच विदेश जाएंगे, किंतु जब वे अंत में संयुक्त राज्य में आ गए तो उनका इरादा वहां से कभी लौटने का नहीं था। यदि 1967 में उन्हें संयुक्त राज्य में लकवा न मार गया होता तो कभी वापस ना आते। उन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि कृष्ण की ऐसी इच्छा थी, नहीं तो लौटने की मेरी कोई योजना नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ अपना स्थायी निवास बनाया। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने पूछा, क्या भारत वापस आने पे आपको खेद है? डू यू रिग्रेट? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मेरी योजना वहाँ रुकने की थी, किंतु कृष्ण की योजना भिन्न है। जब मैं 70 में वापस आ रहा था तो मैंने लॉस एंजलिस मंदिर में कृष्ण के अर्च विग्रह द्वारकाधीश से कहा कि मैं यहाँ धर्मोपदेश करने आया था। मैं नहीं जानता कि आप मुझे वापस क्यों घसीट रहे हैं। ये मैंने उस समय कहा था जब मैं लॉस एंजलिस छोड़ रहा था। मैं प्रसन्न नहीं था, किंतु कृष्ण की अपनी योजना थी। तमाल कृष्ण ने टिप्पणी करी, बहुत अच्छी योजना थी वह। श्री प्रभुपाद ने आगे कहा, कृष्ण ने कहा, जाओ आओ, मैं तुम्हें वृंदावन में इससे अच्छा स्थान दूंगा। तुम वृंदावन में अवकाश ले चुके थे और मैंने तुमसे उसे छोड़ने को कहा। अब तुम्हें वापस आना है, मैं तुम्हें इससे अच्छा स्थान दूंगा। अस्तु। उन्होंने मुझे एक मंदिर दिया जो और किसी भी स्थान से 100 गुना अच्छा है। क्या ऐसा नहीं है? तो पृष्ठ संख्या 662 तक हमने किया है आज, शेष फिर शैल बहुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे।